अरमान जैसे ही उस वार्ड में आस्था को देखने गया, तुरंत आस्था उससे टकरा गई। अरमान ने उसे तुरंत पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। आस्था अरमान को देखकर थरथर कांपने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने अरमान का उसका गला दबाना और चांटा मारना याद आ रहा था। वो काफी डरने लगी और बोलने लगी, नहीं नहीं, हमें मत मारना प्लीज, हमने कुछ नहीं किया, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हमें अपना सपना पूरा करना है, हमें मत मारना, हमें मत मारना। आस्था लगातार यही बात दोहरा रही थी। अरमान आस्था की बातें सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे काफी दर्द महसूस हुआ, लेकिन आस्था बार बार वही बातें बोले जा रही थी। डॉक्टर रश्मि आस्था को रोकते हुए बोली, आस्था तुम इस तरह से नहीं जा सकती हो, रुको प्लीज, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने आस्था को पैनिक करते हुए और अरमान को उसके सामने देखा तो तुरंत उसे संभालने लगी। रश्मि आस्था को शांत करने के लिए बोली, शांत हो जाओ आस्था, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन आस्था बार बार यही कह रही थी, नहीं नहीं, हमें मत मारिएगा प्लीज, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज प्लीज। आस्था अरमान के सामने गिड़गिड़ा रही थी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था को तुरंत एक इंजेक्शन दिया जिससे वो बेहोश हो गई। अरमान ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, इस आफत को क्या हुआ है, ये इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? डॉक्टर रश्मि बोली, आप मुझसे पूछ रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको नहीं पता कि आपकी वाइफ को क्या हुआ है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी वाइफ एक काफ़ी कम उम्र की और इमेच्योर लड़की है। उसे अभी दिन दुनिया का कुछ भी नहीं पता है और आपने उस बच्ची को डरा दिया है। इस वक्त वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रही है और मुझे लगता है कि जब जब वो आपको देखेगी, आपका किया हुआ टॉर्चर उसे याद आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी तबीयत ठीक हो, तो उसके लिए आपको उससे दूर रहना होगा और जितना हो सके उसे दिखाई मत दीजिए, क्योंकि इस वक्त उसे खुश रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो हंसी खुशी नहीं रही तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है और इस बार शायद उसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। डॉक्टर रश्मि के ये कहने पर अरमान की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो लड़की उससे इतना डर जाएगी। आस्था की वही हालत थी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स की होती थी जब वे अरमान के सामने आया करते थे और अरमान उन्हें भयानक सजा दिया करता था। अरमान सबको अपने सामने डरता हुआ देखकर खुश हुआ करता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर सिर्फ दुख ही दुख नजर आ रहा था। अरमान सोच रहा था, ये मुझे क्या हो गया है, उस लड़की के इस तरह से डरने पर मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैं तो यही चाहता था कि वो लड़की मुझसे डरे, तो फिर आज मुझे हो क्या गया है, उस आफत लड़की का मुझसे डरना मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। और जब मुझे डॉक्टर रश्मि ने ये बोला कि मुझे उस लड़की के सामने नहीं आना है और जितना हो सके उससे दूर रहना है, तो ये बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है। कहीं ना कहीं अरमान काफ़ी दर्द में था। हालांकि अरमान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हर्ट भी किया था, लेकिन उसकी डॉक्टर टीम्स ने उसे हैवी पेनकिलर के डोसेस दिए थे जिसकी वजह से वो अभी तक अपने आप को बेटर महसूस कर रहा था। लेकिन अब आस्था के डरने से अरमान को काफ़ी बुरा लगा था। वो जल्दी ही आस्था के वार्ड से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आस्था को होश आ गया। डॉक्टर रश्मि आस्था के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी थी और बोली, मैं जानती हूँ आस्था, तुम्हारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन शायद अरमान ने जो कुछ किया वो किसी गलतफहमी के चलते किया है और तुम्हें ज़रूर उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि अरमान अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है और सबसे ज़्यादा प्यार वो अपने दादाजी से करता है और दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ कि अरमान तुम्हें बिना किसी रीज़न के इस तरह से चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा, ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। रश्मि को भी इस बात के बारे में नहीं पता था कि आखिरकार अरमान ने आस्था को हर्ट क्यों किया था, लेकिन शायद उसने सोचा कि वो जब सिंघानिया मेंशन जाएगी तो हो सकता है उसे इस बात के बारे में पता चल जाए और आस्था इस बात को जितना जल्दी भूल जाए उतना जल्दी उसके सेहत के लिए अच्छा है। तो फिलहाल तो डॉक्टर रश्मि ये बोल रही थी, लेकिन तभी आस्था धीमे स्वर में बोली, लेकिन डॉक्टर रश्मि, हम अपनी नानी माँ से मिलना चाहते हैं, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। डॉक्टर रश्मि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, आस्था अपनी हालत देखो, अगर तुम इस तरह से बीमार होकर अपनी नानी माँ से मिलने जाओगी तो क्या तुम्हारी नानी माँ को कैसा लगेगा और वो तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ऐसी हालत में तो मैं तुम्हारी नानी माँ से मिलने जाना ठीक नहीं आस्था। डॉक्टर रश्मि के ये कहने पर आस्था को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस तरह से नानी माँ से मिलने की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है और अगर वो बीमार हालत में नानी माँ से मिलने जाएगी तो पक्का उसकी नानी माँ उसे देखकर और बीमार हो जाएगी। तो इसीलिए आस्था बोली, तो ठीक है, हम जब ठीक हो जाएंगे हम जरूर जाएंगे अपनी नानी माँ से मिलने। रश्मि ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ जरूर, हम तुम्हारी नानी जी से मिलने जरूर जाएंगे, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम्हारी नानी माँ से उस पिशाच के किस्से भी तो सुनने हैं और साथ ही साथ में झाड़ू से तुम्हारी पिटाई कैसे किया करती थी वो भी जानना है। रश्मि मुस्कुरा दी। आस्था भी डॉक्टर रश्मि की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर, पता नहीं हम भी आपको अपने गांव के कौन से किस्से सुनाने बैठ गए। आप भी पता नहीं हमें बिल्कुल बेवकूफ ही समझ रही होंगी। रश्मि ने आस्था के गालों को छूते हुए कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, बहुत मासूम हो। दोनों मुस्कुरा दी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था को डिस्चार्ज कर दिया। अरमान जानता था कि वो अब आस्था के सामने जल्दी से नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उसे सख्त मना किया था। अरमान दूसरी गाड़ी में बैठा था और डॉक्टर रश्मि और आस्था एक गाड़ी में बैठी थी। वो लोग सिंघानिया मेंशन की ओर जाने लगे थे। सिंघानिया मेंशन में आस्था के वेलकम की अच्छी तरह से तैयारी कर ली गई थी। इतनी तैयारी तो आस्था के वेलकम की पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब सब लोगों को आस्था के साथ एक अलग ही तरह का लगाव था। उन्होंने पूरे मेंशन के हॉल को बलून से सजा दिया था और बड़ा सा वेलकम फूलों से बनाया था। साथ ही साथ हर तरफ लाइटिंग का काम किया था। सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। कहीं ना कहीं आस्था की एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आस्था मौत के मुंह से बाहर आई थी तो वो उसकी अच्छी तरह से वेलकम करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद आस्था और डॉक्टर रश्मि सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुकी थी। आस्था की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर रश्मि इसका सहारा देकर उसे चल रही थी। अरमान उनके पीछे पीछे था। अरमान जैसे हमेशा से ही जल्दी जल्दी और तेज चलने की आदत थी, लेकिन आज वो काफी पीछे था और आस्था के अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। मन ही मन में वो थोड़ा थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था कि क्या ये लड़की थोड़ा तेज नहीं चल सकती है, क्योंकि अभी भी अरमान को ये लग रहा था कि ये आफत लड़की काफी ज्यादा स्लो है, कोई भी काम में तेज नहीं करती है। जब डॉक्टर रश्मि और आस्था अंदर गए, अरमान उनके ठीक पीछे था। आस्था ने अरमान को नहीं देखा था। जैसे ही वे मेन गेट पर गए और दरवाजा खोला तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा देखकर आस्था थोड़ा सा घबरा गई और उसने डॉक्टर रश्मि का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अरमान ने देखा कि डॉक्टर रश्मि आस्था को सही से संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि डॉक्टर रश्मि खुद नाजुक सी एक लड़की है और आस्था को वो भला कैसे संभाल सकती है अकेले।
अंधेरे का फायदा उठाकर अरमान थोड़ा सा आगे आया। उसने अपना एक हाथ आस्था की कमर पर रखा और एक हाथ से आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को अपनी कमर और हाथ पर कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसके सामने अंधेरा था तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, और अंधेरे से डर भी रही थी तो वो धीमी सी आवाज में बोली, रश्मि दी, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? आस्था जानना चाहती थी कि अचानक से पूरे सिंघानिया मेंशन को हुआ क्या है, यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है? रश्मि बोली, मुझे लगता है कि यहाँ की शायद लाइट चली गई है। आस्था मुंह बनाकर बोली, देखा रश्मि दीदी, आपने वैसे तो कितने अमीर लोग बनते हैं ये, पक्का इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा होगा, देखा पूरे के पूरे मेंशन की लाइट ही चली गई। रश्मि का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। एक पल को उसे आस्था की बातें सुनकर हंसी भी आ गई थी। अरमान गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन तभी अचानक जोरों से तालियां बजने की आवाज आने लगी थी। पूरे सिंघानिया मेंशन का हॉल लाइटिंग से सज चुका था। आस्था ने जैसे ही ये सब कुछ देखा, उसकी खुशी से चीख निकल गई थी। वो उछलने लगी थी और सभी लोग एक साथ चिल्लाए थे, वेलकम भाभी। आस्था की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ऐसे सरप्राइजेस उसने हमेशा टीवी वगैरह में ही देखे थे, लेकिन आज इस तरह से किसी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किए थे तो आस्था की खुशी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। सभी बड़ी खुशी से आस्था का स्वागत कर रहे थे। आहान और ध्रुव जोकर के रूप में आकर आस्था का मनोरंजन कर रहे थे। अरमान भी ये सब कुछ देखकर हैरान था, क्योंकि आज पहली बार सिंघानिया मेंशन में इस तरह की कोई पार्टी हो रही थी, इस तरह की कोई खुशी मनाई जा रही थी। वरना हमेशा से ही सिंघानिया मेंशन वीरान खंडहर की तरह था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन की दीवारों में भी जान आ गई हो। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक पल को अरमान सिंघानिया के होठों पर भी मुस्कुराहट टैर गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुस्कुराहट को गायब भी कर लिया था। जैसे ही आस्था ने अपने आसपास देखा और अरमान को आस्था के करीब उसका हाथ पकड़े हुए देखा, तो वो सभी एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देख रहे थे। दादाजी तुरंत आस्था के पास आए थे और उन्होंने अरमान का हाथ पकड़कर उसे आस्था से अलग किया था। आस्था को जैसे कि एहसास हुआ कि उसे अभी तक अरमान ने पकड़ा हुआ था, तो एक पल को वो थोड़ा सा सहम गई थी, लेकिन दादाजी का साथ पाकर वो थोड़ा सा फिर से बेटर फील करने लगी थी। दादाजी बोले थे, आओ बेटा। अरमान वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। अरमान दादाजी का इस तरह से इग्नोर करना टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, और अरमान वहां रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि सब लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन वहां रुकना उसे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था और उसके पर्सनालिटी को भी सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए अरमान जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया था। अरमान के जाने तक सभी लोग खामोश थे, लेकिन अरमान जैसे ही गया, सभी के सभी जोरों से हल्ला काटने लगे थे। ध्रुव और आहान आस्था के आसपास ही मंडरा रहे थे और सभी खुशी खुशी उसका वेलकम कर रहे थे। सुमित और आकाश भी हल्की सी स्माइल के साथ आस्था के पास आए थे। आकाश आस्था की ओर देखकर बोला था, हमें बहुत खुशी हुई आज कि आप सही सलामत घर आ गईं, वेलकम होम। आकाश साइड हो गया था। रश्मि ने गहरी नजरों से आकाश को देखा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें आकाश पर से हटा ली थीं।